आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और काफी मजे में होंगे। प्रिय बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त सावन और आज हम लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 भाग 1 का अध्याय चौथा चतुर्थ अध्याय संस्थाओं का कामकाज के अगले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं ऐसा कहूं कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा। ये टॉपिक ऐसा है जो आप रोज अखबारों में देखेंगे, अक्सर अखबारें इससे रंगी होती हैं, अक्सर इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और यहां तक तो मैं कहूं कि हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित भी करती हैं। आइए मैं इस टॉपिक को आपको आपका नाम बता दूं। देखिए, इस टॉपिक का नाम बहुत प्यारा है, संसद, पार्लियामेंट। आपके एरिया से एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ऐसा है जिसे हम सुनते रहते हैं। बच्चों आइए अब मैं आपको संसद की यात्रा पर ले चलता हूं। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब अस्पष्ट रूप से तो आपको संसद दिख नहीं रहा था उसमें पिछले में जो भी हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए, हवा हमें नहीं दिखती है, मगर क्या हम कह सकते हैं हवा हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, है ना? इसी तरह आइए इन कुछ वाक्यों को देखिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर डैश चर्चा हुई संसद में, भारत के राष्ट्रपति ने इसका डैश में जिक्र किया था संसद में, प्रधानमंत्री ने संसद में, इस तरह की बातें थी, है ना? तो वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से संसद है। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। प्रिय बच्चों, कहा जा रहा उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि ठीक है, कैबिनेट ने तो कह दिया लेकिन संसद नहीं मानती, और फिर संसद की भूमिका क्या है? तो संसद ने इस पर चर्चा की तो जो बिंदु संसद को लगे कि ये नहीं होने चाहिए थे उसे उन्होंने हटा दिया, है ना? तो संसद का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल है, तो वैसे तो नहीं दिखता है मगर अप्रत्यक्ष रूप से काफी ज्यादा डाला जा रहा है, काफी ज्यादा आप देखें तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका एक तरह से सामने आ रही है। अब जरा सोचिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मना कर दिया होता, मान लीजिए आप हैं कक्षा के मॉनिटर हैं और आपके 3-4 साथी के साथ आप अपनी कक्षा का देख रेख करते हैं, आप कोई फैसला लेते हैं और अगर पूरा क्लास उसे मानने से इनकार कर देता है, आपकी कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं उसे मानने से इनकार कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उस फैसले को ले पाएंगे? यही स्थिति संसद की। कैबिनेट कुछ चुनिंदा लोग हैं और संसद वहां पे जो है वो विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि होते हैं, तो बिल्कुल अगर नहीं देती तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो फैसला हो ही नहीं पाता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है, किसी भी करती है। देखिए, अब संसद क्या है, संसद की आवश्यकता क्यों है? सबसे बड़ी बात बच्चों हमें यह जानना चाहिए, कोई चीज है तो उसकी जरूरत ही क्यों है? संसद ऐसी तो नहीं कि बेकार है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इस पे। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद में 1 घंटे में 13 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो जो चलती है। अब सोचिए कि इतनी बड़ी रकम भाई फिजूल की तो खर्च नहीं की जाती, तो संसद क्या है? यह हमारी राजनीतिक कार्यपालिका का जो है ऊपर सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार जो हमारे हैं, हम वोट डालते हैं, है ना, चुनते हैं, किन्हें चुनते हैं? तो प्रतिनिधियों को। वो प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं, वो प्रतिनिधि कहाँ बैठ के बनाएंगे नियम? तो वो जहाँ बनाएंगे वो संसद है, है ना, वो उनके जो सभा होती है वो जहाँ बैठते हैं वो संसद होती है, और फिर राज्यों में से विधानसभा कहते हैं। देखिए दूसरे देशों में अलग अलग नाम होता होगा मगर काम सबके लगभग लगभग यही होते हैं। पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं, या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। देखिए ये विधायिका है, जो करे उसे उसमें अक लगाते हैं। जैसे जो शिक्षा देता है तो शिक्षक आप लगाते हैं ना, शिक्षिका लगाते हैं, तो विधान मतलब नियम, जो नियम कानून बनाए वो विधायिका हुआ। अब विधायिका कितनी बड़ी होती है, नए कानून बना सकती है, नए कानून का निर्माण कर सकती है, सोचिए, और मौजूदा कानून जो है उसे खत्म भी कर सकती है। मीन्स कितनी बड़ी है। जैसे अगर मान लें आपकी कक्षा को ये कहा जाए, ये कह दिया जाए भाई आपकी कक्षा जो है वो विद्यालय के रूल बनाएगी, तो आपकी कक्षा विधायिका बन जाएगी। फिर आप तय करेंगे कि स्कूल में किस वर्ग में कौन से विद्यार्थी जाएंगे, वह कौन से वर्ग शिक्षक जाएंगे, किस शिक्षक को कब क्लास लेनी होगी। तो इस तरह से आप विधायिका मतलब आप समझ रहे हैं, कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, और नियम से तो हम सबको चलना पड़ता है। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है। दूसरा, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। देखिए अगर संसद का समर्थन आपको नहीं है तो आप फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि जब संसद का समर्थन ही नहीं है तो बहुमत नहीं है, बहुत से लोग आपके साथ नहीं है, जनता नहीं चाह रही है कि आप चलाएं, तो फिर आप फैसला नहीं करेंगे। मतलब संसद का समर्थन होना चाहिए। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। जैसे आप मान लें विद्यार्थियों की या प्रिय बच्चों के आप सरस्वती पूजा करते हैं या कोई और भी पूजा चंदा लेके करते हैं, तो वो सार्वजनिक पैसा होता है ना, तो उसमें आप अकेले तो नहीं कर सकते, जो मन में आप खर्चा कर देंगे, आपकी ग्रुप होती है, उन सबों से आप चर्चा करते हैं कि देखो यहाँ लगाना है वहां लगाना है, उस पर नियंत्रण रहता है। यही काम संसद करती है। सड़क बनानी है, कितने पैसे चाहिए, कितना वेतन देना है, तो जो भी पैसा सरकार लेगी, क्योंकि जनता का पैसा हमसे टैक्स लेती है ना, तो उस पर संसद निगाह रखती है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। देखिए बिल्कुल आपने याद कीजिए लोकतंत्र का, कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में अंतिम फैसला करने की ताकत होनी चाहिए। ये चुने हुए प्रतिनिधि कौन है, यही तो संसद में बैठते हैं, तो इनके पास ही फैसला करने की ताकत है और ये किसी से भी सूचना मांग सकते हैं। अब देखिए बड़ा ही मुन्नू प्रश्न पूछ रहा है, जब हमें मालूम है कि जिस पार्टी की सरकार है उसके विचार ही प्रभावी होंगे तो संसद में इतनी बहस और चर्चा करने का क्या मतलब है। प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात मुझे बताइए, है ना, हम सबको मालूम है कि क्रिकेट क्या होता है ना, क्रिकेट खेलते भी हम लोग हैं, उसके बाकायदा नियम होते हैं, लेकिन क्या सारे नियम आप रखते हैं? आप मैदान में खेल रहे हैं, क्या सारे नियम आपको मालूम होते हैं? क्या सारे नियम खिलाड़ियों को पता होते हैं? उनके लिए अंपायर रखा जाता है ना। तो संसद में सरकार के विचार तो प्रभावी हैं, ठीक है, सरकार ने मान लिया, सरकार की बातें होती है, लेकिन सरकार भी तो गलत कर सकती है, उसमें वो भी जनता के मामले को नजरअंदाज कर सकती है, तो फिर संसद में बहुत सारी चर्चा तो होगी ही, ताकि जो खोट है, जो गलतियां हैं वो निकल सके, है ना। जैसे किताबें तो आपके पास हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर शिक्षक क्यों? तो शिक्षक आप समझाते हैं, या फिर जहां कहीं आप गलती करते हैं तो शिक्षक आपको बतलाते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, आपको यहां करनी चाहिए, इसीलिए संसद में पक्ष होता है। संसद के दो सदन। चूंकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। देखिए यहाँ पर एक बात आप स्पष्ट समझें कि देश बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, आजकल जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो एक दो में बांट दिया जाता है। एक होता है कि भाई जनता द्वारा आप चुने, तो इसमें कोई भी प्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे, वो अपना मान लें जीत गए, अब उनके पास उतनी योग्यता नहीं है। कल्पना कीजिए कि क्रिकेट के बारे में कुछ नियम बनाना है खिलाड़ियों के बारे में, तो क्या जितना अच्छा से सचिन जानेंगे उतने अच्छे से कोई और जान पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सचिन ने तो उसको बहुत खेला है, उसे बहुत जिया है। सरकार चाहती है कि गायन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, तो जो लता मंगेशकर चुन पाएंगी या अभिनय में हेमा मालिनी चुन पाएंगी, स्वाभाविक है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं चुन पाएंगे। इसीलिए हम राज्यसभा बनाते हैं, उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें लिए जाते हैं। अब विशेषज्ञों को तो जनता चुनेगी नहीं, क्योंकि आमतौर पर जनता में उतनी राजनीतिक समझ नहीं होती है, तो उनके लिए राज्यसभा बना दिया जाता है कि भाई आप विशेष विशेष जो हैं वो इसमें आ जाएं, और जो अमूमन चाहते हैं कि राजनीति में जनता की सेवा करना वो अपना भाई लोकसभा में आ जाएं। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो हमारे देश में भी दो हैं। देखिए हाउस ऑफ स्टेट्स, नाम से आपको पता चल जाएगा, राज्यों का सभा है ना, राज्य सभा, मतलब इनका काम क्या होता है कि राज्यों को देख रेख करें, राज्य में अगर कुछ समस्याएं हैं, कोई विषय उस तरह के आ गए हैं जिनमें संविधान टकराहट हो रही है केंद्र में राज्य में, अब मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए हमें ये चाहिए ऐसा करना होगा, राज्य कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इन मामलों में कुछ नियम बनेंगे कानून बनेंगे, वैसे जब भी विवाद आते हैं तो वहां के सदस्य होते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि देखिए हमारे राज्य को ये चाहिए, हमारे राज्य को ये चाहिए, है ना। और दूसरा आप देख रहे हैं ना हाउस ऑफ पीपल, जनता का घर, तो जनता का घर कौन है, जनप्रतिनिधियों का घर, है ना। देखिए प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि आप इसे जरा समझ लें, हाउस ऑफ स्टेट्स यानी कि उसको जनता नहीं चुनेगी, वहां के जो और भी कुछ लोग हैं चुनाव आगे आप देखेंगे, और जो पीपल है वो जनता का घर है। आप इस बात को गौर रखें तब आपको पता चलेगा कि दोनों में से ताकतवर घर कौन होता है, बस इसे आप याद रखें। देखिए राष्ट्रपति तो सीधे सीधे किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो देश के मालिक हैं, है ना, उनके सपोर्ट के लिए आपका होता है। जैसे वर्ग शिक्षक हैं, आपके कक्षा में दो गुट हैं, एक जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और एक जो मान लीजिए बहुत अच्छा खेलते हैं, तो शिक्षक क्या होंगे, शिक्षक ना तो आपके होंगे ना उनके होंगे, है ना। तो लेकिन हाँ आप उनके साइन उनकी अनुमति के बाद ही आप पढ़ने वाले अपना काम कर सकते हैं, खेलने वाले अपना काम कर सकते हैं, अनुमति के बाद ही ना। तो उसी तरह राष्ट्रपति का भी ये होता है, जब वो साइन कर देते हैं हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर संसद के फैसले लागू। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है, अध्याय 4 से आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए कि प्रिय बच्चों पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि लोकसभा कैसे होती है, राज्यसभा क्या है, और थोड़ी बहुत तो आपने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि चुनाव कैसे होते हैं। हम बांट देते हैं एरिया को, फिर एरिया से चुनते हैं संसदों को, वोट देते हैं, जो ज्यादा लाता है वो जीत जाता है, है ना। तो अब आइए कुछ प्रश्न है जिसके आप जवाब दें। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, याद कीजिए बच्चों, लोकसभा में आपको पता है कि अधिकतम 545 हो सकती है, फिर राज्यसभा में भी आपने देखा 245 होगी। सदस्यों को कौन चुनता है, याद कीजिए लोकसभा के निर्वाचन में कौन चुनता है, तो एक को राज्य की विधायिका चुन लेती है कि वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, और इन्हें कौन चुनता है आपके एमपी को, हम चुनते हैं। कार्यकाल कितना होता है, तो आप जानते हैं कि 6 साल राज्यसभा के लिए है और लोकसभा के लिए 5 साल। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वो अस्थाई है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा तो अस्थाई है और लोकसभा ये अस्थाई है, इसलिए तो 5 साल के बाद मोदी जी आते हैं ना, मित्रों हमें वोट दीजिए, इस तरह से करते हैं ना, वोट मांगने आते हैं ना, थैंक यू। चलिए ये तो खैर थोड़ी सी मजेदार चर्चा थी, मैं आपको अगले टॉपिक पर लाता हूं। लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है, यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। देखिए अब उसको अपर हाउस बोल दें क्योंकि आप राज्यों से चुन के जा रहे हैं, विशेषज्ञ तो आप एक दिन में बनेंगे नहीं, 60 उम्र हो गई, 65 उम्र हो गई, बाल पकने लगे हैं, तो राज्यसभा में आप चले गए हैं, अब आप पार्टी के लिए भी कोई काम के नहीं है, तो भाई इनको राज्यसभा में बना दो, वेतन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप सारे बूढ़ों की है, बड़े बुजुर्गों की वो है, तो आपको बता दिया कि अपर हाउस है और राज्यसभा लोकसभा लोअर हाउस है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि अपर हाउस का मतलब बहुत ताकतवर है और लोअर हाउस ये बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और संविधान में तो इस भाषा का प्रयोग भी नहीं किया है, तो हम सब बोलचाल में कहते हैं। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। प्रिय बच्चों मैंने कहा था ना, अब उस बेसिक्स को याद कीजिए, लोकसभा जनता की सभा, और याद कीजिए लोकतंत्र में किसका तंत्र, जनता का तंत्र, मेरा शासन जनता का शासन। स्वाभाविक सोचिए, जब मेरा शासन है तो मैं जो घर बनाऊंगा, मैं जहां पे लोगों को भेजूंगा वो ताकतवर होंगे, क्योंकि उनसे वो मेरे सीधे उनसे मुझ पे शासन चलवाना है, और ये तो सिर्फ सहायता के लिए गए हैं राज्यसभा वाले कि आप जाइए, है ना। तो देखिए आइए देखिए कैसे ताकतवर है, कुछ मुद्दों को देखिए। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। आपने क्रिकेट, तो क्रिकेट प्रेमी तो होंगे ही होंगे, प्रिय बच्चों क्रिकेट खूब खेलते होंगे। अब कल्पना कीजिए कि क्रिकेट में क्या होता है। पहली बात तो जब तक खेल तो दो टीम से होगा, लेकिन अंपायर एक रहेगा, है ना, अंपायर के फैसले माने जाते हैं। अब क्रिकेट में मान लें कि कभी आपने भी वही स्कोर बनाया, उन्होंने भी वही स्कोर बना लिया, भारत ने जो बनाया वही इंग्लैंड ने बना लिया, तो अब मामला सुपर ओवर में खिंच जाता है। तो आमतौर पर तो दो खिलाड़ियों में से पता चल जाता है हार जीत किसकी हुई, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मामला सुपर ओवर तक जाता है, एक एक ओवर आपको खेलने होंगे, है ना। अब उसमें देखिए मान लीजिए कि जो बढ़िया खिलाड़ी हैं अगर वो उतर जाते हैं तो लगता है नहीं अरे ये तो जिता देंगे मैच, ये तो बढ़िया खेल रहे हैं, और सामने वाली टीम के पास उस तरह के नहीं है, तो संभावना बनती है ना, क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा मेंबर है, तो लोकसभा के ज्यादा मेंबर हैं तो स्वाभाविक है कि वो उसके पक्ष में वोट देंगे, तो लोकसभा का विचार ज्यादा माना जाता है, क्योंकि वो 550 लोग वहां पर आएंगे। लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों का देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। फिर से उस बेसिक को लागू कर दीजिए बच्चों, लोकसभा है ना, जनता की सभा, पैसा किसका, जनता का। जब मेरा पैसा है तो मैंने जिसे नियुक्त किया है वह खर्च करेगा, स्वाभाविक है, तो अधिकार किसके पास ज्यादा रहेंगे, लोकसभा के पास, और पैसे के मामले में तो और ज्यादा, क्योंकि पैसा तो जनता का है ना, तो राज्यसभा उसे खर्च करने के लिए कैसे कर सकती, क्योंकि आपको तो हमने नहीं चुना है ना, आपको तो हम, अब मान लें कि आप ही, हम सब आप सब चंदा करके सरस्वती पूजा करते हैं या कोई और भी फंक्शन करते हैं, तो जिन्होंने आपको चंदा दिया है वो तो आपसे जिम्मेदारी है, जवाबदेही और खर्चे का ब्यौरा मांगेंगे। उनसे तो नहीं मांगेंगे ना कि जो राह चल रहे हैं, या उनसे भी तो नहीं मांगेंगे ना जिन्होंने आपका टेंट बना दिया है। उनका काम तो था कि उन्होंने आके आपका टेंट बना दिया, मूर्ति लगा दी, लेकिन खर्च का ब्यौरा तो आपसे मांगा जाएगा क्योंकि चंदा आपको दिया गया था। यही चीज लोकसभा में है बच्चों, यही चीज। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। फिर से मैं कहूंगा बच्चों कि आप उस बेसिक को लागू कर दीजिए, जनता ने चुना है आपको, है ना, और लोकतंत्र बहुमत का होता है। देखिए कैसे हम समझ हम इसी तरह चीजों को समझ सकते हैं। जनता ने आपको चुना और जनतंत्र में शासन उसका होगा जिसका बहुमत होगा। अब राज्यसभा को तो हमने चुना नहीं, लोकसभा को चुना, तो प्रधानमंत्री कहाँ बनाए जाएंगे, लोकसभा में। कौन बनाए जाएंगे, जिनको लोकसभा में भी ज्यादा मिलेगा, बहुमत मिलेगा, आधे से ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा। और मान लीजिए आधा ज्यादा लोग कह देते हैं, आधा से ज्यादा सांसद कह देते हैं नहीं नहीं भाई, ये जो मंत्री परिषद है, ये जो प्रधानमंत्री है, हमको भरोसा नहीं है। यानी जनता का भरोसा आप पर से उठ गया बच्चों। अब जब जनता का भरोसा उठ गया तो आपको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि आप तो जनता पे शासन करते हैं ना, जनता ने आपको अधिकार दिया, और जब आपको अधिकार ही खो चुके हैं तो पद पे कैसे बने रहेंगे। प्यारे बच्चों आइए यहाँ खुद करें और खुद सीखने के लिए है। मैं मानता हूं, मैं इसे सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे अच्छी चीज मानता हूं किताब में, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली से सिखाती हैं। तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है, संसद सत्र के दौरान दूरदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों पर रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है। कार्यवाहियों को देखकर या अखबारों से उसके बारे में पढ़कर निम्नलिखित चीजों की सूची बनाएं: संसद के दोनों सदनों के अधिकार, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। आप प्यारे बच्चों से अगर मान लें कभी अवेलेबल ना हो तो अगर स्मार्टफोन है तो यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं, वहां इसके स्टोरेज रहते हैं। डीडी नेशनल नाम का चैनल खोल सकते हैं, वहां से आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा में बहस होती है और राज्यसभा में बहस होती है, विपक्ष क्या करता है, पक्ष क्या करते हैं, अध्यक्ष क्या करते हैं, अधिकार क्या है दोनों के, तो काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। एक तरह से लाइव इंटरेक्शन होगा और इससे आप बेहतर से समझ भी पाएंगे। आइए बच्चों मैं आपको एक यहाँ अगले जो पृष्ठ पे दिया गया है कि लोकसभा में दिन कैसे गुजरता है। जैसे आप कक्षा में जाते हैं ना, तो पूरा स्कूल में आपका दिन कैसे गुजरता है, सुबह गए, फिर वहां पे आपने पहली कक्षा ली, लंच तक ली, फिर आपने लंच किया, फिर उसके बाद वो कक्षाएं धीरे धीरे आपकी जाने लगती है, आप वेट करते हैं कब छुट्टी हो या खेल की घंटी लगे या फिर आप घर जाएं और खेलें। है ना, इस तरह से हमें कितनी उत्सुकता रहती है। और बिल्कुल मैं कहूँ तो इस अवस्था में तो आपकी उत्सुकता बिल्कुल जायज भी है और बहुत ये मौजूद भी बहुत बिल्कुल मैं पता हूँ परफेक्ट है कि आप खेलना चाहते हैं, है ना। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है चूंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, लेकिन मुझसे अभी तक किसी विद्यार्थी ने ये नहीं पूछा कि सर मैं कितने घंटे खेलूँ। तो एक तरह से एक अच्छा होता है कि आप खेलने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। आइए जिस तरह से आपके स्कूल में एक दिन गुजरता है, लोकसभा में एक दिन मैं गुजारूं। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय भी कर सकते हैं। देखिए आप एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। 11 बजे कोई मंत्री बन जाए, कोई विपक्ष के, देख लें किस तरह से क्या बनना है। विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर में आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कह रही। फिर देखिए 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। देख रहे हैं सरकार की जो भी चीजें हैं, जैसे आप देश चला रहे हैं तो आपको पेश करना पड़ेगा संसद के समक्ष कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसा इनकम है, ऐसी हमने व्यवस्था की है, संसद के सामने को रखना होगा। फिर देखिए क्या होता है 12:02 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। आप देख रहे हैं खर्च भी मांगना है तो आप संसद के समक्ष मांगेंगे, कुछ और भी आपको मुद्दे उठाने हैं तो उठाइए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। ऐसे ही नहीं बोल सकते आप कुछ कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैं मंत्री हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए आपने बताना पड़ा है ना कि हमने ये अध्यादेश क्यों लाया। अध्यादेश का अर्थ हुआ कि अब सरकार सीधे सीधे उस काम को कर सकती है। 12-14 कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिनमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का प्रतिशोधात्मक रवैया, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत, आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों की नवीनीकरण की आवश्यकता। आप देख रहे हैं किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं अलग अलग। उधर CBI का मामला है, बीज का मामला है, किसान का मामला है। 2:26 पर सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन विधेयक। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ कानून बनाने हैं या पहले के कुछ कानून हैं उसमें जो संशोधन करने हैं उन सब की चीजें, उन सब का जिक्र यहां पर किया गया है। 4 बजे आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई, कैसे नीति रखनी है, क्यों रखनी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और 7:17 पर चर्चा समाप्त हो गई। संसद अगले दिन तक के लिए स्थगित हुआ। क्या फिर वहां से अगले दिन चल, आपने देखा बच्चों कैसे संसद में एक दिन बीत रहा है, कैसे जा रही बीत, कैसे संसद का दिन गुजर रहा है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन चीजों को इस तरह से देखेंगे तो काफी ज्यादा एक तरह से समझे कि मैं मानता हूं कि आप अगर आप एक दो वीडियो इस तरह से देख लेते हैं तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि विपक्ष कैसे है, पक्ष क्या कर रहा है और दूसरे नेता कैसे काम कर रहे हैं, नियम कैसे पारित हो रहे हैं इन सब। आइए मैं आपको अगले स्टेप पे लेके चलता हूं, राजनीतिक कार्यपालिका। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। हमने पाया था कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। आपने देखा ना कि बीपी सिंह ने कह तो दिया लेकिन संसद की अनुमति लेने के बाद, कि अगर संसद अनुमति नहीं देती पारित करना मुश्किल था, आपसे पारित नहीं कर सकते। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आम तौर पर कार्यपालिका से ही होता है। देखिए कार्यपालिका क्या है? कार्य मतलब काम, पालिका जो करे, है ना, या फिर करवाए। अब सरकार ने कोई नीति लागू कर दी तो सरकार तो आएगी, मोदी जी आपके घर तो नहीं आएंगे उज्ज्वला देने के लिए, स्वच्छ भारत करने के लिए। कौन आएंगे? तो BDO साहब है, वो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कीजिए, है ना। या फिर मुखिया है, वो जाएंगे, वो आपका काम करवा रहे हैं ना, कार्य कर रहे हैं ना, इसीलिए वो कार्यपालिका कहते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं सरकार चुनती है कि आप मेरा काम करेंगे, DM हो गए, SP हो गए, फिर BDO हो गए, है ना। ये सब क्या कर रहे हैं? कार्य संपादित कर रहे हैं, जो सरकार कह रही है उसको लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे और भी कुछ नियम है, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन सबको कौन जिले में इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन आपके एरिया में इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो ये कर रहे हैं ये अधिकारी, ये कार्यपालिका कहला। और प्रधानमंत्री भी एक तरह से समझें कि कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जनता उन्हें ये अधिकार देती है कि वह उनके हितों की चिंता करें और करें और उनके लिए काम भी करें। तो काम करना हुआ ना कार्यपालिका, कार्य रूप देना कि कैसे काम को करना है। राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनैतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिए, बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका कौन? जो राजनीति संबंधित हो। राजनीति कौन? नेता। नेता संबंधित हो। नेता कौन? जिन्हें जनता चुने, है ना। तो जनता कितने दिन के लिए चुनेगी? 5 साल के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का तो गुण है कि आपको बहटना पड़ेगा, 5 साल बाद चुनाव होंगे, समय समय पर जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो आप अस्थायी हुए ना, आपको जनता चुन रही है। अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि जिन्हें हमने चुना उसने एक फैसला लिया कि ठीक है कुछ ऐसे लोग चाहिए कि भाई हम तो बदल जाए, जनता का तो कोई इच्छा नहीं आज है हम रहे, लेकिन हमने जो नीति बना दी उसे कौन लागू करेगा, या जब हम ना रहेंगे कोई और नहीं आएगा, बीच में जगह होगी, कौन से करेगा? तो कुछ तो ऐसे चाहिए ना जो नहीं बदले, तो उन्हें हम अस्थाई कहते हैं, जो परीक्षा निकाल के जाते हैं। आप लोगों ने UPSC का नाम सुना होगा ना, संघ लोक सेवा आयोग, उसके तहत जो परीक्षा निकाल लेते हैं, परीक्षा पास कर जाते हैं, उन्हें DM बनाया जाता है, तो ये अस्थाई होते हैं। अब कार्यपालिका ज्ञापन को देखिए, BP सिंह और उनके मंत्रिमंडल ने फैसले लिए, उन फैसलों को किसने, कैसे फैसले लिखे जाएंगे, कैसे नोटिस बनेगा, इसको किसने तैयार किया? किसी उनके सचिव ने, और सचिव कौन होगा? ये IAS स्तर के अधिकारी होंगे, यही नौकरशाह होंगे। ये अस्थायी कार्यपालिका है, इनके फिक्स होते हैं कि आपको इतना दिन काम करना है, इतना वेतन मिलेगा, ये सरकारों के बदलने पर नहीं बदलते हैं। ये अस्थायी हो गए, और राजनीति आप जानते हैं जो राजनीति से प्रेरित है। आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होता है? मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों? आपने पीछे देखा ना कि राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से ज्यादा होती है, वो उसे आदेश देती है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब इन्हें उतनी जानकारी नहीं है जितने नौकरशाहों को होती है, वो बहुत दिन पढ़ते हैं, बहुत लंबा, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, विभिन्न तरह की जानकारी होती है, तो उन्हें क्यों नहीं लिया जाता, और ये कौन होते हैं जो उन्हें कह दें? क्योंकि देखिए मेरे बच्चों, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है ना कि जो शिक्षक आपको पढ़ाने आ रहे हैं वो आपसे भी कम जान रहे हो, तो कैसे पढ़ाएंगे भला, ये कैसे संभव है? तो यहाँ ऐसा क्यों होता है कि भाई नेता तो अशिक्षित हैं, अब ये इतने शिक्षित हैं और ये फैसला लेने की आप उनको दे देते हैं, उनके अंदर इनको रख देते हैं, इनके अंदर उन्हें क्यों नहीं रखते हैं? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। अब देखिए, पहली बात तो है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र जनता का शासन है। प्लीज इस बेसिक को मत भूलिए, लोकतंत्र जनता का शासन है। जब जनता मंत्री को चुन रही है, यानी जनता ने सीधे सीधे ऑर्डर दिया है कि आप हम पर शासन करेंगे, यू विल रूल ओवर अस। उन्होंने अस्थायी कार्यपालिका को आदेश नहीं दिया, इसीलिए जो ताकत होती है वो मंत्री के हाथ में होती है। अब देखिए, मान लीजिए मैं शिक्षा मंत्री हूँ और मैं पर्यावरण मंत्री हूँ और मैं पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने आज तक एक घास एक वृक्ष तक नहीं लगाया, उसे क्या, मुझे तो कुछ करना नहीं है। अगर उसमें कुछ फैसले लेने हैं तो वहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं जो ये सब करके गए हैं, वो मुझे बताएंगे कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी है, सब फैसले देंगे। अब मैं मंत्री हूँ तो मुझे उनमें से जो अच्छा लगा विकल्प मैं उसको लागू कर दूंगा। जनता के प्रति जवाबदेही भी मेरी है, जिम्मेदारी भी मेरी है। अब मान लीजिए कि एक लोक सेवक कह रहे हैं सर ऐसा मत कीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता को क्या चाहिए, तो मैं उसके विकल्प को खारिज भी कर दूंगा। और अगर मान लीजिए मुझे ही अधिकार नहीं रहे, उसे ही रहे, तो जो वो कहेगा वो करेगी, तो फिर जनता ने जो मुझे चुना है, जनता को खुद का शासन करना, तो उनका शासन नहीं हुआ, ये तो अफसर का शासन हो गया। जहां कभी कभी इसके एक शब्द यूज किया जाता है, अफसरशाही, कि भाई ये अफसर बन गए हैं तो बिल्कुल अपने ही नियम लगा रहे हैं, तो अफसरशाही भी शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक बात बच्चों, मैं आपको विशेषता अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि देखिए, मंत्री भले ही शिक्षित ना हो, भले ही उनका सेंस जो है उतना नहीं हो, लेकिन एक बात आप समझ लें कि जनता के प्रति उनकी कॉमन सेंस जबरदस्त होती है। वो जनता की नब्ज को अच्छे से समझते हैं। जनता की, देखिए कोई मंत्री ऐसे तो नहीं बनता है, वो भी जनता के बीच में घूमता है, काफी लोगों संपर्क में रहता है, नौकर सा उतने नहीं रहते। तो जितनी जनता की जरूरतों की समझ उनको होती है, उतनी उनके उन्हें नहीं होती, अफसरों को नहीं होती, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं और जाते आते रहते भी, इसलिए उन्हें जनता की बहुत समझ होती है ना। प्रिय बच्चों, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। देख रहे हैं, मंत्री को मैंने कहा है कॉमन सेंस होता है, उन्हें बहुत जबरदस्त नजरिया होता है, पूरे एरिया पूरे जनता के बारे में वो समझते हैं, जनता की नब्ज समझते हैं, जनता क्या चाहती है वो उन्हें पता होता है, उसे वो भांप लेते हैं। एक प्रशासक ऐसा नहीं भांप सकता, इसीलिए अधिकतर ताकत लेने की, अधिकतर जो मतलब निर्णय लेने की क्षमता होती है वो उनके हाथ में। अब मान लीजिए आप अपने शिक्षक से पूछें कि सर गांव में क्या क्या होना चाहिए सर, है ना, गांव में क्या सुधार करना चाहिए, तो आपके शिक्षक बोलेंगे देखो लाइब्रेरी खोल दें, देखो सड़क बढ़िया बन जानी चाहिए। लेकिन आप एक मुखिया से पूछें तो वो कहेगा कि नहीं नहीं जनता को अभी किसकी जरूरत है, तो अभी एक हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि वो जनता की नब्ज को समझता है, जनता अभी क्या चाह रही है। वो लाइब्रेरी और रोड से नहीं है, उस सबसे पहले हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि इस एरिया में बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, है ना, तो उसे जनता की नब्ज का अच्छे से पता होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आइए बच्चों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ ले जाता हूं। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। देखिए बहुत विचित्र पद है प्रधानमंत्री का, राजनीतिक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, मतलब एक तरह समझे कि पूरे देश के बिहार पे वो प्रतिनिधि हैं। अभी आप देखें ना, हमारे राष्ट्रपति का नाम शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हर हर मोदी, मोदी जी का नाम तो हर कोई जान रहे हैं ना। पीएम होते ही हैं, उनकी बिल्कुल चमकदार छवि होती है। तो अब कहा लेकिन पीएम का मामला थोड़ा टेढ़ा है, इनका कार्यकाल तय नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी रही कि प्रधानमंत्री कौन है भाई, तो मंत्रियों में से एक होते हैं, उतने सारे मंत्रियों के प्रधान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पद है। अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो जो बहुमत दल के नेता, मतलब जिन्हें लोकसभा में ज्यादा लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारा नेता ये होगा, तो जो लोकसभा का नेता होगा प्रधानमंत्री बनेगा। अब प्रधानमंत्री भी बनेगा, यहाँ पर आप एक चीज देख लें, अगर मान लें कि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति पर यह होता है कि राष्ट्रपति आए और कहें कि देखिए मुझे लगता है कि यह आदमी सही है और ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, और उसे अंदेशा भी रहता है कि लोकसभा के बाकी दल इसे सपोर्ट करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लें कि एक परिवार है, उसमें चार बेटे हैं, तो जो बाप है राष्ट्रपति समझ लीजिए, वो किसी बेटे को नियुक्त कर सकता है कि आज से घर का देखरेख ये करेगा, जिस पर उसे आशा हो कि परिवार के लोग भी मानेंगे और उसका सपोर्ट भी होगा। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। अब प्रधानमंत्री को बना दिया राष्ट्रपति ने, तो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, वो कहेंगे हमको मंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति कहेंगे चुन लीजिए अपना, तो वो चुन लेते हैं। शर्त क्या रहेगी भाई कि वो लोग, उन्होंने जनता का विश्वास तो जीता हो ना उन्होंने, तब ना कैसे बना देंगे, चूंकि तो आपको जनता के मर्जी शासन करना है, तो क्या जनता उसे चुन चुकी है, जनता ने उसे अधिकार दिया है, तो हाँ दिया है तो बना लीजिए, नहीं दिया है लेकिन ये आदमी काम का, ठीक है आप बना लीजिए, लेकिन 6 महीने के अंदर इसे जनता का विश्वास हासिल करना होगा, इसे चुनाव जीतना हो तभी हम इसे कहेंगे। समझ रहे हैं ना आप। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। देखिये 60 से 80 मंत्री मिलकर एक मंत्रिपरिषद बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, तो जो सरकार चलाती है जिसमें सभी मंत्री होते हैं, तो परिषद मतलब क्या, बैठक है ना, परिषद मतलब समझ लीजिए कि एक समूह, मंत्री परिषद मंत्रियों का समूह। तो 60 से 80 मंत्री होते हैं, आपने नाम भी देखा होगा बच्चों, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, कितने कितने मंत्री होते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, जहाज रानी मंत्री, सड़क मंत्री, रेल परिवहन मंत्री, कितने मंत्री हैं। तो सबको विभाग बांट दिया जाता है और इनके देख रेख के लिए मंत्री बना दिए जाते हैं, है ना। जैसे आपके स्कूल में होता है ना, प्रधानाचार्य का कक्ष, शिक्षक का कक्ष, फिर विभाग होते हैं कि सफाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, घंटी विभाग, उसी तरह कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। देखिए कुछ विशेष विभाग होते हैं, है ना, तो उनमें जो बहुत दिनों से हैं या फिर जिनको राजनीति का गहरा समझ है उन्हें बनाया जाता है। तो ये कौन होंगे, जो पार्टी में लंबे समय से हैं, तो इनकी संख्या कुल लगभग 25 होती है। ये वरिष्ठ होते हैं और मतलब मेन मंत्री जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं आप वो होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट के बैठकों में भाग लेते हैं। देखिए कैबिनेट के बैठक मतलब कौन, वही 25 मंत्री बैठेंगे। जैसे कुछ कुछ मंत्रालय बहुत अहम होते हैं, शिक्षा हो गया, है ना, विदेश नीति हो गई, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब बहुत विशेष मंत्रालय है ना, उसमें आपके जो टॉप मंत्री वो बैठेंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले हुए कि ठीक है कोई छोटा मोटा है भाई, खेल मंत्रालय है तो बहुत ज्यादा इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसके नियम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो किन्हीं को बना दिया, अभी नए नए सांसद है, 10 साल हुआ है, 2-3 बार जीत रहे तो बना दो इन्हें, इन्हें कब, जब बुलाया जाएगा आप आइए कैबिनेट बैठक में, तब ये वहां पर आके बैठेंगे और फैसले लेंगे। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। देखिए कैबिनेट मंत्री को तो पूरे देश के लिए नियम बनाने हैं, 28 राज्यों के लिए, पूरे 15 प्रदेशों के लिए। तो राज्य मंत्री होते हैं कि अगर मान लीजिए विभाग बहुत बड़ा हो गया, तो उन्हें नहीं हो रहा है, तो एक ऐसे मंत्री लगा दिए जाते हैं जो राज्यों से अपनी सूचनाएं लेकर उनको देंगे या उनकी सहायता करेंगे, जिन्हें राज्य मंत्री कहते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। कैबिनेट महत्वपूर्ण है, उसमें फैसले हो गए, याद है आपको, कैबिनेट ने फैसले लेकर लागू कर दिया, तो कैबिनेट महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह है, तो आमतौर पर फैसले वही ले लेती है, सब आपस में नहीं बैठते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि आप देख रहे हैं ना, एक स्थायी कार्यपालिका चाहिए तो वो तो है, सब सचिव हो गए, कैबिनेट सचिव करके होते हैं, ये तालमेल बना लेते हैं कि आप बताइए, और जो भी सूचनाएं मंत्रियों को चाहिए फैसले लेने के लिए वो देते हैं। और दूसरी बात देखिएगा, अब ये टीम है, आप क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चों, ये बच्चों क्रिकेट तो खेलते होंगे, अब जब टीम हारती है तो क्या कप्तानी जिम्मेदार होता है? टीम जिम्मेदारी लेती है, और जीतने पर भी पूरी टीम खुशी मनाती है, तो मंत्रिपरिषद भी है। और दूसरी बात कि आप अगर अपनी टीम के हैं तो अपने टीम के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो उसी तरह अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो कोई मंत्री इसकी आलोचना नहीं कर सकता, इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। तो इस तरह से कैबिनेट जो होती है आमतौर पर फैसले लेती है, और आमतौर उसके मंत्री उन्हीं के फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते। कुछ करें कुछ सीखें। देखिए, केंद्र और अपने राज्य सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के नाम लिखें। देखिए प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि बेहद आसान सा है और आप इसे कर भी लेंगे। अपने शहर के नगर निगम पालिका प्रमुख या अपने जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष से मिलें और उनसे पूछें कि वे अपने शहर या जिले का प्रशासन किस तरह चलाते हैं। देखिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर ये संभव ना हो तो अपने गाँव के कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले जो थोड़े बहुत राजनीति में सक्रिय रहते हों, तो वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। एक कार्टून के लिए देखिए कितनी अच्छी बात है। मंत्री बनने की होड़ नई नहीं है। यह कार्टून 1962 के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की बेचैनी दर्शाता है। राजनेता मंत्री बनने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं, आप क्यों सोचते हैं? देख रहे हैं आप, इधर प्रधानमंत्री नेहरू जी सोच रहे हैं कि किसको घटाएं किसको जोड़े, पूरी मंत्रियों की भीड़ लगी, कोई झांक रहा है, कोई ताक रहा है, कोई एकदम उस पर चढ़ा जा रहा है, क्यों मंत्री बनना चाहिए भाई? तो मंत्री तो मलाईदार पोस्ट, आप बन गए, आपके अंदर विभाग है, आप फैसले लेते हैं, देश चलाने में आपका होता है, शान बान भी होती है, लोग आपको पूछते भी हैं, तो भला कौन मंत्री बनना नहीं चाहेगा? इसीलिए लोग मंत्री बनने के लिए होड़ लगा देते हैं। फिर एक आप कार्टून देखें, ये तो बहुत ही प्यारा कार्टून है। इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं और उनके सामने देखिए मंत्रिमंडल को। इस कार्टून में अपनी लोकप्रियता के उफान वाले 1970 के दशक में शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया है। क्या आपको लगता है उनके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार या रूप में दिखाते हुए कार्टून बनाया जा सकता है? देखिए, अभी तो आप मोदी जी को ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अभी भी लोकप्रियता के बहुत उफान पर है। इसमें देखिए, कहना कार्टूनिस्ट ये चाह रहा है कि जब प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो कैबिनेट के और मंत्री उनके सामने बौने हो जाते हैं, मतलब फिर एक टीम नहीं रह जाती। अब देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी बड़ी हो गई और सारे कैबिनेट वाले किस तरह बच्चे की तरह रो रहे हैं, कोई इधर दांत घुमा रहा है, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं, कोई उधर, मतलब जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही होगा। आमतौर पर कैबिनेट एक टीम होती है, एक लोकतांत्रिक टीम होती है जहां पर मिलकर फैसले लिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी बातें की जाती है। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि कैबिनेट कैसे काम करता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। तो इन सबों के बारे में अगर आप थोड़े से डिटेल देखेंगे, उन चीजों को देखेंगे, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमने यह भी देखा कि लोकसभा की कार्यवाही चलती है जिसमें अध्यक्ष होते हैं, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। हमने यह भी देखा कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है और फिर संसद की क्या भूमिका होती है। इस तरह से हमने आज इन सबों के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी जगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप जो होमवर्क है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे, तो हमें और भी अच्छा लगेगा और हम और मिलकर अपनी पढ़ाई को अच्छे ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। मैं आपका दोस्त सावन कुमार इसी के साथ विदा लेता हूँ कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।